मैं अजीत कुमार, बीए द्वितीय वर्ष। मैं अंधा युग नाटक, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है, की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम स्वर्गीय डॉक्टर धर्मवीर भारती के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। जन्म 25 दिसंबर 1926 प्रयाग के अतरसुईया मोहल्ले में। पिता स्वर्गीय श्री चिरंजीव लाल वर्मा, माता स्वर्गीय श्रीमती चंदा देवी, पत्नी पुष्पा भारती, संतान पारमिता मित्तल, किंसुक भारती व प्रज्ञा भारती। बचपन और शिक्षा। शाहजहांपुर के निकट खुदागंज कस्बे के पुराने जमींदार परिवार के 5 भाइयों में से एक थे चिरंजीव लाल वर्मा। उन्होंने पुस्तैनी रहन सहन छोड़कर रुड़की में ओवरसियरी की शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिन वर्मा में सरकारी नौकरी और ठेकेदारी की, फिर उत्तर प्रदेश में लौटकर पहले मिर्जापुर और फिर अस्थायी रूप से इलाहाबाद में बस गए। बालक धर्मवीर बचपन में 1-2 वर्ष पिता के साथ आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन में रहे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इलाहाबाद के डीएवी हाई स्कूल में पहली बार 4th क्लास में नाम लिखाया गया। 8वीं कक्षा में थे तभी पिता का देहांत हो गया। उसके बाद बहुत दारुण गरीबी में दिन बीते। प्रयाग में बसे मामा श्री अभय कृष्ण जौहरी के परिवार के साथ रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से सन 1942 में इंटरमीडिएट पास किया। 42 के आंदोलन में भाग लिया और पढ़ाई एक बरस रुक गई। सन 1945 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की व हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर चिंतामणि घोष मेडल के हकदार बने। सन 1947 में वहीं से प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। आजीविका। छात्र जीवन से ही ट्यूशने कर आत्मनिर्भर होना पड़ा। एमए की पढ़ाई का खर्च अभ्युदय। संपादक श्री पंतकांत मालवीय में पार्ट टाइम का काम करके निकाला। 1948 में संगम में सरकारी संपादक नियुक्त हुए। 2 वर्ष वहां काम करने के बाद हिंदुस्तानी अकादमी के उप सचिव का कार्य किया। तदुपरांत प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 तक वहां कार्य किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। निकस पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी किया। उसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक पद पर बंबई आ गए। धर्मयुग हिंदी के सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक के रूप में स्थापित हुआ। 1987 में डॉक्टर भारती ने अवकाश ग्रहण किया। 1989 में हृदय रोग से गंभीर रूप से बीमार हो गए। गहन चिकित्सा के बाद प्राण तो बच गए किंतु स्वास्थ्य पूरी तरह कभी सुधरा नहीं और 4 सितंबर 1997 को देहावसान हो गया। नींद में ही मृत्यु ने वरण कर लिया। यात्राएं। सन 1961 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस कमेटी के आमंत्रण पर प्रथम विदेश यात्रा पर इंग्लैंड तथा यूरोप भ्रमण। पश्चिम जर्मन सरकार के आमंत्रण पर 1964 में जर्मनी यात्रा तथा 1966 में भारतीय दूतावास के निमंत्रण पर इंडोनेशिया तथा थाईलैंड की यात्राएं की। सितंबर 1971 में मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश की गुप्त यात्रा की तथा क्रांति का पहला आंखों देखा प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान भारतीय स्थल सेना के साथ वास्तविक युद्ध स्थल पर निरंतर उपस्थित रहकर युद्ध के वास्तविक मोर्चे में रोमांचक अनुभवों को लिपिबद्ध किया। इसके पहले ऐसा काम अभी किसी पत्रकार ने नहीं किया। भारतीय मूल की मॉरिशसीय जनता की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जून 1974 में मॉरिशस की यात्रा की, फिर एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पुनः मॉरिशस गए। 1978 में चीन की सिनुआ संवाद समिति के आमंत्रण पर भारत सरकार के डेलीगेशन के सदस्य के रूप में चीन की यात्रा पर गए। 1991 में परिवार के साथ अमेरिका यात्रा पर गए और अपने भारत देश के तो हर प्रांत के में बार बार अनेक यात्राएं की। यात्राएं डॉक्टर भारती को बहुत सुख देती थी। अलंकरण तथा पुरस्कार 1972 में पद्मश्री से अलंकृत हुए। 1997 में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना को प्रतिवर्ष 51,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। पुरस्कार का नाम है धर्मवीर भारती महाराष्ट्र सारस्वत सम्मान। 1999 में युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर भारती पर वृत्त चित्र का निर्माण हुआ। अब हम इस नाटक के पहले अंक अर्थात कौरव नगरी के विषय में पढ़ेंगे। पहला अंक कौरव नगरी। तीन बार तुर्यनाद के उपरांत कथा गायन। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों के में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर वो युग बीत गया। पर्दा उठने लगता है। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सुना गलियारा है, घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। पर्दा उठाने पर स्टेज खाली है। दाई और बाई ओर बर्छे और ढाल लिए दो प्रहरी हैं, जो वार्तालाप करते हुए यंत्र परिचालित से स्टेज के आर पार चलते हैं। पहला प्रहरी। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम कर पहरा देते हैं इन सूने गलियारों में। दूसरा प्रहरी। सूने गलियारे में जिसके इन रत्न जड़ित फरसों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा हैं। पहला प्रहरी कहता है, थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमें भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। भाले हमारे ये, ढाले हमारे ये, निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। दूसरा प्रहरी कहता है, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ, संस्कृति थी यह एक बुढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। पहला प्रहरी फिर बोलता है, जिसने अब हमको थका डाला है, मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। दूसरा प्रहरी बोलता है, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। चुप होकर वे आर पार घूमते हैं। सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा हो जाता है। नेपथ्य से आंधी की सी आवाज आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौहों पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। पहला प्रहरी, सुनते हो, कैसी है ध्वनि यह भयावह। दूसरा प्रहरी, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ। पहला प्रहरी, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ, शायद बादल हैं। दूसरा प्रहरी भी बगल में आकर देखता है और भयभीत हो उठता है। दूसरा प्रहरी कहता है, बादल नहीं हैं, वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पंखे खोले। पंखों की ध्वनि के साथ स्टेज पर और भी अंधेरा। पहला प्रहरी, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। दूसरा प्रहरी, झुक जाओ झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे, गिद्ध भूखे हैं। प्रकाश तेज होने लगता है। पहला प्रहरी, लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। आंधी की ध्वनि कम होने लगती है। दूसरा प्रहरी, मौत जैसे ऊपर से निकल गई। पहला प्रहरी, अपशकुन है भयानक वह, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। विदुर का प्रवेश बाईं ओर से। पहला प्रहरी, कौन है? विदुर, मैं हूं विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा यह भयानक दृश्य? पहला प्रहरी, देखेंगे कैसे वे, अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे। विदुर, मिलूंगा उनसे मैं, अब सकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। प्रहरी जाते हैं, विदुर अपने स्थान पर चिंतातुर खड़े रहते हैं। पीछे का पर्दा उठने लगता है। कथा गायन है, कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लाशों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गीधों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, क्रिस गंधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। पर्दा उठने पर अंतःपुर, कुशासन बिछाए सादी चौकी पर गंधारी, एक छोटे सिंहासन पर चिंतातुर धृतराष्ट्र, विदुर उनकी ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र, कौन संजय? विदुर, नहीं विदुर हूं महाराज, बिहुवल है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय की। कुछ क्षण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा कर। महाराज, चुप क्यों हैं इतने आप, माता गंधारी भी मौन है। धृतराष्ट्र, विदुर जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र, पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था, द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। धृतराष्ट्र, समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण मैं बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। विदुर, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। धृतराष्ट्र, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था, मैंने अपने ही व्यक्तित्व संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए। वस्तु जगत इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित, मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थीं। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म, बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था, उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड भी नहीं है। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य, मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। विदुर, पहले ही दिन से किंतु आपका वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। धृतराष्ट्र, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे, मैं हूं जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूं, संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धर उसे ओठ तर किए होंगे। गंधारी, कानों पर हाथ रखकर, महाराज मत दोहराएं वह सह नहीं पाऊंगी। सब क्षण भर चुप। धृतराष्ट्र, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तित्व सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा यह लगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे व्यक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया। मेरे अपने व्यक्तिक मूल्य, मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। विदुर बोलते हैं, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। धृतराष्ट्र कहते हैं, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर बोलते हैं, भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था यह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे। भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। गंधारी आवेश में आकर, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है यह जिसने पितामह के वाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है यह जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। धृतराष्ट्र कहते हैं, शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं। गंधारी बोलती हैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, यह सब हैं केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सब के मन में कहीं एक अंध गह्वर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है स्वामी, जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनाशक्ति, कृष्णापर्ण, यह सब है। अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। विदुर कहते हैं, कटु हो गई हो तुम गंधारी। पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्हें ने कहा था दुर्योधन से? गंधारी बोलती है, मैंने कहा था दुर्योधन से? धर्म जिधर होगा वो मूर्ख, उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधे प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। धृतराष्ट्र कहते हैं, शांत रहो गांधारी। विदुर बोलते हैं, यह कटु निराशा की उद्वत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गंधारी। गांधारी कहती हैं, माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों की वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपने इस आंचल से सेंदूर की रेखाएं पोछी हैं। नेपथ्य से जय हो दुर्योधन की, जय हो गंधारी की, जय हो, मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का, मंगल हो। धृतराष्ट्र कहते हैं, देखो विदुर, देखो संजय आए हैं। गांधारी कहती हैं, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय आज। प्रहरी का प्रवेश। प्रहरी, याचक है महाराज। याचक का प्रवेश, एक वृद्ध याचक है। विदुर कहते हैं, याचक है? उन्नत ललाट, श्वेत केसी, अजानु बाहु। याचक कहता है, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में मानव नियति के अलिखित अक्षर, जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। धृतराष्ट्र कहते हैं, याद मुझे आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। याचक, मैं हूँ वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति में गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। विदुर कहते हैं, प्रभु थे वे? गांधारी कहती है, कभी नहीं। विदुर कहते हैं, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। याचक कहता है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। गंधारी कहती है, प्रहरी, इसको एक अंजुल मुद्राएं दो, तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। याचक कहता है, मैं तो हूं झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरों में, नगरी में। गली गली माता है गंधारी, ममता में पाल रही है शब को। प्रहरी मुद्राएं लाकर देता है, जय हो दुर्योधन की, जय हो गंधारी की, और वह जाता है। गंधारी कहती हैं, होगी, अवश्य होगी जय, मेरी यह आशा, यदि अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन, जीतेगा दुर्योधन ही। दूसरा प्रहरी आकर दीप जलाता है। विदुर कहते हैं, डूब गया दिन। धृतराष्ट्र कहते हैं, पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे, सब योद्धा अब शिविर में, जीता कौन हारा कौन? विदुर कहते हैं, महाराज संशय मत करें, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें, नगर द्वार अपलक खुले ही हैं, संजय के रथ की प्रतीक्षा में। एक ओर विदुर और दूसरी ओर धृतराष्ट्र तथा गंधारी जाते हैं। प्रहरी पुनः स्टेज के आर पार घूमने लगते हैं। पहला प्रहरी, मर्यादा। दूसरा प्रहरी, अनास्था। पहला प्रहरी, पुत्र शोक। दूसरा प्रहरी, भविष्यत। पहला प्रहरी, ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। दूसरा प्रहरी कहता है, वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं, इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। पहला प्रहरी कहता है, पर यह जो हम दोनों का जीवन सुने गलियारों में बीत गया। दूसरा प्रहरी कहता है, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा? पहला प्रहरी कहता है, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। दूसरा प्रहरी कहता है, हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई गहन आस्था। पहला प्रहरी कहता है, हमने नहीं झेला शोक। दूसरा प्रहरी कहता है, जाना नहीं कोई दर्द। पहला प्रहरी, सुने गलियारों का सुना यह जीवन भी बीत गया। दूसरा प्रहरी, क्योंकि हम दास थे। पहला प्रहरी कहता है, केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की। दूसरा प्रहरी कहता है, नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना निर्णय। पहला प्रहरी कहता है, इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश्य चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। दूसरा प्रहरी कहता है, मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। चलते चलते विंग में चले जाते हैं, स्टेज पर अंधेरा धीरे धीरे पटाक्षेप के साथ। इसके बाद कथा गायन होता है। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे, यह साम पराजय की भय की संशय की भर रहे तिमीर से ये सूने गलियारे, जिनमें बुढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे, अंदर केवल दो बुझती लपटे बाकी राजा के अंधे दर्शन की बारी की, या अंधी आशा माता गंधारी की, वह संजय जिसको यह वरदान मिला है वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से, वह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। अब नाटक का दूसरा अंक, पशु का उदय। सर्वप्रथम कथा गायन। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में, दायित्व गहन भाषा अपूर्ण श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में, वह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठने पर वनपथ का दृश्य, कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र से मुख ढांप सोया है, संजय का प्रवेश। संजय कहते हैं, भटक गया हूं मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी, क्यों जीवित बचा हूं मैं, कैसे कहूं मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है, युद्धों में घटा जो जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की, आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जाकर वह योद्धा पुकारता है, संजय। किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है यह मेरा भ्रम ही है। कृतवर्मा कहता है, डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। संजय, जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भुलुंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर, सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध है। कैसा यह साप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में, हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूंगा हाय। सात्विकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना, मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था, जैसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया, कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। कृत वर्मा कहता है, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय कहते हैं, कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया, कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा। फिर वह जाता है। कृत वर्मा कहते हैं, चला गया संजय भी, बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। नेपथ्य में कोई पुकारता है, अश्वस्थामा। कृत वर्मा ध्यान से सुनता है, यह तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य में पुनः पुकार, अश्वस्थामा। कृत वर्मा पुकारता है, कृपाचार्य कृपाचार्य। कृपाचार्य का प्रवेश होता है, यह तो कृत वर्मा है, तुम भी जीवित हो कृत वर्मा। कृत वर्मा, जीवित हूं, क्या अश्वस्थामा भी जीवित है। कृपाचार्य, जीवित है, केवल हम तीन आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वस्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष, आत्रनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वस्थामा पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है, पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाश वृत्त अश्वस्थामा पर, जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वस्थामा, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वस्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र दीन आंसू में आए भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है यह, जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा अब मैं प्रतिशोध, पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं, कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वस्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी दृष्ट दुम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला, भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजय, अर्धस्वत से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धशत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया, उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में भटक गया, गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वस्थामा कायर अश्वस्थामा शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। वक्ष पीटता है, आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से, छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नेपथ्य में पुकार, अश्वस्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा, वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उग आए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चिथ खाएं, पाए जिसे, वध केवल वध केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। किसी के आने की आहट आता है, कोई शायद पांडव योद्धा है। आह, अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। छिपता है तभी संजय का प्रवेश होता है। संजय कहते हैं, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे। आह, अश्वस्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। अश्वस्थामा, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वस्थामा हतो हतः। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। कृतवर्मा चीख कर, छोड़ो अश्वस्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं है। अश्वस्थामा कहता है, केवल केवल वध, केवल। कृपाचार्य कहते हैं, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वस्थामा को, वध केवल शत्रु का। कैसे योद्धा हो अश्वस्थामा, संजय अवध है, तटस्थ है। अश्वस्थामा कृतवर्मा के बंधन में छटपटाता हुआ, तटस्थ, मातुल मैं योद्धा नहीं हूं, बर्बर पशु हूं। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन, सुन लो यह घोषणा। इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे, वह शत्रु है। कृतवर्मा कहता है, पागल हो तुम संजय, जाओ अपने पथ पर। संजय कहता है, मत छोड़ो, विनती करता हूं, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध, जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे जो वध ज्यादा सुखमय है, वध करके मुक्त कर दो मुझे अश्वस्थामा। अश्वस्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उसके कंधों से शीश टिका देता है। अश्वस्थामा कहता है, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, अब है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, किसको पा जाऊं मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। कृपाचार्य कहते हैं, मत हो निराश अभी। कृतवर्मा कहता है, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजें उन्हें। कृपाचार्य कहते हैं, संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वो। संजय धीमे से कहता है, वे हैं सरोवर में, माया के बांध कर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है यह पांडव दल को। कृपाचार्य कहते हैं, स्वस्थ हो अश्वस्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से, संजय चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कृतवर्मा कहता है, कौन आ रहा है वह वृद्ध व्यक्ति। कृपाचार्य कहते हैं, निकल चलो इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। अश्वस्थामा कहता है, जाते जाते, मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। वृद्ध याचक बोलता है, दूर चला आया हूँ काफी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ, दिन नहीं दिख नहीं पड़ता है, निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को, देखूं मुझको जो मुद्राएं दी माता गंधारी ने, वे तो सुरक्षित हैं। मैंने यह कहा था, यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो सत्यम होगा, वह तो सत्यम होगा, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ। झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। हाँफता है। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुककर धनुष देखता है और उठाकर कहता है, किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? तभी अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। मेरा धनुष है यह, वृद्धयाचक कहता है, कौन आ रहा है यह? जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा कहता है, जय मत कहो वृद्ध, जैसी तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जड़ित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय हो दुर्योधन की। वृद्ध याचक कहता है, जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पर्याजय या दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला, मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। धीरे धीरे वो जाने लगता है। अश्वत्थामा कहता है, मैं क्या करूंगा, हाय मैं क्या करूंगा, वर्तमान में जिसके मैं हूं और मेरी प्रतिहिंसा है, एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर तो वह तटस्थ है, शत्रु है अगर वह तटस्थ है। वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है, आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो, ओ झूठे भविष्य वंचक वृद्ध, दांत पीसते हुए दौड़ता है, विंग के निकट वृद्ध को दबोचकर नेपथ्य में घसीट ले जाता है। वध, केवल वध, केवल वध मेरा धर्म है। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज, अश्वत्थामा का अट्टहास। स्टेज पर केवल दो प्रकाश वृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हाँफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं। कृपाचार्य कहते हैं, यह क्या किया अश्वत्थामा, यह क्या किया? अश्वत्थामा कहता है, पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ किया? कृतवर्मा कहता है, कृपाचार्य भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य कहते हैं, बैठो विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। अश्वत्थामा कहता है, मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, अब है यह मनोग्रंथि, इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव दूर हुआ, कहते क्या इसी को है अनासक्ति। कृपाचार्य कहते हैं, सो जाओ, कहाँ है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडव गण क्या करते हैं, करवट बदल कर तुम सो जाओ। कृतवर्मा सो गया। कृतवर्मा कहता है व्यंग से, सो गया, इसलिए शेष बच गए हैं हम इस युद्ध में, हम जो योद्धा थे अब लुक छिप कर बुढ़े निहत्थों का करेंगे वध। शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक, द्रोण थे बुढ़े निहत्थे पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ा अभिमन्यु को, यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, साथ महारथियों ने। अश्वत्थामा कहता है, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह बुढ़ा मरा पाया गया। मैंने नहीं मारा उसे मातुल, विश्वास करो। कृपाचार्य कहते हैं, सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर। वे लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती है विकृति शव अवधाया, वैसे ही तट पर तज अवस्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छठी हुई आत्माओं की रात, यह भटकी हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्व में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की।